विजय और दामिनी ने आहान की कैद से छूटने की कोशिश की थी, लेकिन आहान ने उन्हें पकड़ लिया था। विजय और दामिनी दोनों ही एक छोटे से एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, जिसे आहान ने एक बड़े एक्सीडेंट में बदल दिया था। वे दोनों मर चुके थे। जब विजय और दामिनी की मौत हुई थी, तब आयुष और आहान वहीं पर थे और उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उनके मरते ही आयुष और आहान घर पर पहुंचे। गाड़ी की आने की आवाज़ सुनकर शिवानी जल्दी से बाहर गई। आहान और आयुष तब तक अंदर आ चुके थे। उन दोनों को सही सलामत देखकर शिवानी ने राहत की सांस ली। शिवानी ने उन दोनों को गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। गार्ड ने बताया कि विजय और दामिनी ने भागने की कोशिश की थी। जाने दो ना आहान, उन्हें जो करना है करने दो, मुझे मेरे बेटे सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। आहान शिवानी को सहलाते हुए सख्त आवाज में कहा, शांत हो जाइए मॉम, सब ठीक है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। शिवानी उन दोनों से अलग हुई। उसने आहान की आंखों में देखते हुए सिर हिलाकर कहा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, पति कभी मेरा था ही नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट के बाद काफी घबरा गई थी मैं, कहीं तुम्हें ना खो दूं। हाँ, मुझे ये प्रॉपर्टी, पति, पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं, मेरे पास रहें और बिल्कुल ठीक रहें। तुम अब उसके पीछे नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो मुझसे। बोलते हुए शिवानी ने अपना हाथ आहान के आगे कर लिया ताकि उससे प्रॉमिस ले सके। शिवानी को लगा उसे इसके लिए आहान को मनाना पड़ेगा, लेकिन आहान ने तुरंत ही अपना हाथ शिवानी के हाथ पर रख दिया था। वो हाँ में सिर हिलाकर बोला, डोंट वरी मॉम, अब मैं उनके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो क्या, उनके पीछे अब कोई नहीं जा सकता। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का, शिवानी ने हैरानी से पूछा। आहान काफी घुमा फिरा कर बातें कर रहा था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान कुछ कहता उससे पहले आयुष जल्दी से बोल पड़ा, इसलिए क्योंकि आपके डियर हस्बैंड और उनकी सो कॉल्ड लवली वाइफ इस दुनिया में नहीं रही है, वो दोनों मर चुके हैं, तो हम क्यों उनके पीछे जाएंगे, अब तो उनके पास भी वापस आने का ऑप्शन नहीं है। बताते हुए आयुष कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। पहले उसे विजय से प्यार था, एक पिता के तौर पर वो उसकी इज्जत करता था, अपनी फैमिली को साथ देखना चाहता था, पर उसकी सच्चाई सामने आने के बाद वो उसे कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगा था। शिवानी को आयुष की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने आहान की तरफ देखा तो आहान ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। शिवानी की आंखों से आंसू का कतरा बह गया। विजय के लिए शिवानी को रोता देखकर आयुष गहरी सांस लेकर बोला, कम ऑन मॉम, आप उस इंसान के लिए रो रही है जिसने कभी आपको जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी, इनफैक्ट आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, इतने साल आपको धोखे में रखा। हाँ, जैसा भी था, पर एक वक्त उसके साथ एक रिश्ता था, शिवानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया था। जब विजय की मौत के बारे में शिवानी ने अचानक से सुना तो उसके दिमाग में वो सब यादें ताज़ा हो गई थीं, जब पहली बार वो विजय से मिली थी या उनकी शादी हुई थी। विजय का सच पता चलने से पहले तक वो उसके लिए एक परफेक्ट पति था। शिवानी को संभालने के लिए आहान ने उन्हें हक कर लिया। वो शिवानी को सहलाकर बोला, मैं आपके इमोशन से समझ सकता हूँ मॉम, इंसान किसी कुत्ते के साथ रहता है तो भी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, फिर वो तो आपका पति था, वैसे देखा जाए तो वो काफ़ी गया गुजरा इंसान था, तो उनके जाने का दुख नहीं होना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं और एक ग्रैंड पार्टी करते हैं अपने दुश्मन के मरने की, आयुष जल्दी से बोल पड़ा। हर बार की तरह वो पार्टी करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसकी बात सुनकर आहान और शिवानी उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, आयुष ने कंधे उचकाकर पूछा। आहान उसकी बात के जवाब में बोला, हाँ गलत कहा है तुमने, क्योंकि वो जैसा भी था दुनिया की नज़रों में हमारा बाप था, हमें उसकी चिता को अग्नि भी देनी होगी, लोगों के सामने दुखी होने का दिखावा भी करना होगा और बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी होगी, ये एक्साइटमेंट और पार्टी बचा कर रखो, फिलहाल तो हमें एक अच्छा सा फ्यूनरल अरेंज करना है। ओके ओके समझ गया, मैं अपने कमरे में रोने की सोने की तैयारी करने जा रहा हूँ, आप देख लेना, आयुष ने सिर हिलाकर कहा और फिर वहाँ से कमरे में जाने लगा। आहान ने भी उसे रोका नहीं। शिवानी इस वक्त कैसा महसूस कर रही थी वो आहान समझ सकता था। आयुष ने रोने से मना किया था, ऊपर से दोनों बच्चे उसे गलत ना समझे ये सोचकर शिवानी अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए थी। आहान ने कुछ पल शिवानी के चेहरे को गौर से देखा और फिर सख्त आवाज में बोला, आप चाहो तो रो सकती हो, खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इतने साल उसने आपको धोखे में रखा और इन सब के चक्कर में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए उसने आपके सामने देवता बनने का दिखावा किया, काफी अच्छे मोमेंट्स बिताए होंगे आप दोनों ने, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को। थैंक्स मुझे समझने के लिए, शिवानी ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा और फिर वहां से अपने कमरे में चली गई। आहान शिवानी को जाते हुए देख रहा था, अचानक उसके दिमाग में चाहत की याद ताजा हो गई। उसने अपने मन में कहा, मैंने भी तो डॉल के साथ में इतना कुछ किया, शायद तभी वो मुझसे नफरत नहीं कर पाई। मैंने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं उन्हें सुधार कर सब सही कर दूंगा। डॉल, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मुझे सब कुछ याद आए या ना आए, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि कभी तुम्हें पुराने आहान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आहान जल्दी से चाहत के पास गया। चाहत आराम से सोई हुई थी। चाहत को देखकर आहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। चाहत नींद में कसमसाते हुए बोली, छोड़िए ना आहान, इतनी मुश्किल से नींद आई थी और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, आई एम सॉरी डॉल, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं डिस्टर्ब करूंगा। आहान ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी थी, जबकि पहले ऐसा होता था कि उसे चाहत के कंफर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहत को काफी कसकर अपनी बाहों में जकड़ कर सोता था। कुछ ही देर में आहान को भी नींद आ गई थी। उसके आदमियों ने सब कुछ संभाल लिया था। वो जानते थे कि कैसे विजय और दामिनी की गाड़ी का परफेक्ट एक्सीडेंट दिखाना है और किसे इन सब का इल्जाम अपने सिर पर लेना है। जैसा कि प्लान में शामिल था, अगली सुबह 10 बजे के करीब आहान के विल पर पुलिस आई। अब तक सभी मीडिया चैनल में ये न्यूज़ वायरल हो चुकी थी कि मुंबई के फेमस बिजनेसमैन विजय ओबेरॉय और उनकी सेकेंड वाइफ दामिनी ओबेरॉय का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें उनकी मौत हो चुकी थी। आहान और उनकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हुए ब्रेकफास्ट टेबल पर थी। वहां पर चाहत भी थी। चाहत अब तक हुए इस हादसे से अनजान थी। इस न्यूज़ के बारे में बताने के लिए पुलिस आहान के घर पर आई। उन्हें देखकर आहान उठा और काफ़ी बेपरवाही से बोला, इंस्पेक्टर आप यहाँ, वो भी मेरे घर पर, सब ठीक है ना? मेरे किसी एम्प्लॉय ने गलती से किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ है मिस्टर ओबेरॉय, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर गंभीर चेहरे के साथ बोले, आपके डैड मिस्टर विजय ओबेरॉय और आपकी मॉम दामिनी ओबेरॉय का कल रात को बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। काफ़ी बुरा हुआ इंस्पेक्टर, पर वो मेरी मॉम नहीं थी। मेरी मॉम वहाँ टेबल पर बैठी हुई है, आहान ने सख्त अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर शिवानी की तरफ देखा। शिवानी की आंखों से आंसू बह गए थे, जो कि काफ़ी नॉर्मल था। चाहत शिवानी को संभालने लगी। उसके लिए ये न्यूज़ काफ़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि जहाँ तक चाहत को पता था, विजय और दामिनी नीचे बेसमेंट में कैद थे।
ठीक है, लेकिन आगे की फॉर्मेलिटी आपको ही करनी होगी। उनकी डेड बॉडीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्ग में है। जिस भी ट्रक के साथ उनकी गाड़ी टकराई थी, उसका ड्राइवर भी घायल हालत में है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इंस्पेक्टर ने कहा। उसका काम था आहान को पूरी इन्फॉर्मेशन देना। वो देने के बाद इंस्पेक्टर वहां से चला गया। आहान ने गहरी सांस ली और वापस डाइनिंग टेबल की तरफ आया। तभी चाहत उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। उसने उसी अंदाज में पूछा, आखिर चल क्या रहा है आहान, इसके बारे में मुझे कोई कुछ बताएगा? गुस्से में चाहत का बीपी हाई होने लगता था। अब भी ऐसा ही हो रहा था। चाहत की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। तभी आयुष जल्दी से उठकर आया और उसने चाहत को चेयर पर बिठाते हुए कहा, ऐसी हालत में तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, आराम से बैठो, सब बता देंगे, आखिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। देखकर लग नहीं रहा कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, आप तीनों को सब कुछ पता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं। विजय ओबेरॉय और दामिनी तो नीचे कैद है ना, फिर पुलिस ने आकर ये क्यों कहा कि वो मर चुके हैं? चाहत ने आहान की तरफ देखकर गुस्से में पूछा। आहान उसके पास आया। वो काफ़ी नॉर्मली बिहेव कर रहा था। आहान ने जूस का ग्लास चाहत को देकर कहा, सबसे पहले तुम खुद को शांत करो। कोई तुम्हें कुछ बता नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे सब छुपाना चाहते हैं। तुम्हारी हालात ऐसे नहीं है कि अचानक से तुम्हें सब बताया जाए। पुलिस वाले ने भी सब अचानक ही आकर बताया था। मैं खुद को संभाल सकती हूँ आहान, आप मुझे इतना कमज़ोर मत समझिए, प्लीज़ मुझे सच बताइए, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, चाहत चिढ़ते हुए बोली। आहान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, रात को दामिनी और विजय घर से भाग गए थे। तुम्हें याद नहीं होगा, पर रात को यहाँ पर गोलियाँ भी चली थीं। मुझे सब याद है आहान, इसके बारे में आपने मुझे ये कहा था कि पड़ोस में किसी की शादी है और शायद कोई पटाखे चला रहा है, चाहत ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, वही पटाखे गोलियाँ थीं। हम उनके पीछे गए तो उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसे हमने एक बड़े एक्सीडेंट में बदल दिया। वो दोनों मर चुके हैं और हमारी मुसीबतें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम आराम से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। ज़्यादा मत सोचो, अब कोई दुश्मन नहीं रहा है हमारा, आहान ने चाहत को समझाते हुए कहा। चाहत को भी विजय की मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, और ना ही इस बात से फर्क पड़ा कि आहान ने विजय को मार दिया है। विजय ने निशा को मारा था, इस वजह से चाहत उससे नफरत करती थी। उसके हिसाब से विजय ओबेरॉय और दामिनी ऐसा ही अंत डिजर्व करते थे। चाहत ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। उसे हल्के से हग करके कहा, चलो अब अपना मूड सही करो, कहा ना आप सब ठीक है और आगे भी सब अच्छा होगा। फ्यूनरल के बाद हम तुम्हारा चेकअप करवाने जाएंगे और फिर डिलीवरी की तैयारी भी करनी है। जहां आहान और पूरी ओबेरॉय फैमिली को ये लगता था कि विजय और दामिनी के जाने के बाद उनके ऊपर से दुख के बादल छट चुके हैं, वहीं उनसे अलग राजवीर शर्मा कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसे चाहत की अपनी बेटी होने की सच्चाई पता चल चुकी थी,
तो अब उसके सामने विजय और दामिनी की मौत का खुलासा भी हो गया था। तो तुम मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकले आहान ओबेरॉय, अपने ही आप को मार दिया और किसी को शक भी नहीं होने दिया। ठीक है, मजा आएगा जब सामने वाला खिलाड़ी टक्कर का निकलेगा। तुमने अपना दाव चल दिया है, अब मेरी बारी है। इससे पहले अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होना तो बनता है, आखिर उसी ने तो मुझे मेरे फेवरेट खिलौने से मिलाया था, राजवीर ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। वो किसी साइको की तरह था जिसे दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलने में मजा आता था।